मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 23 नवंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने दो नौजवान साथियों का, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं गोरेलाल अहिरवार, जो सिमरिया मध्य प्रदेश से हैं, और मोनिका अहिरवार, जो बरेली मध्य प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में लव जिहाद, इसके बारे में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आप जानते हैं कि आज सोमवार है और सोमवार को हम लोग थोड़ी सी कोविड की बातें करते हैं, और इसके बारे में आप शायद मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे। स्थितियां बेहतर होती चली जा रही हैं, जो स्वस्थ होने का प्रतिशत है 93.69% तक पहुंच गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में इसकी जो सेकेंड लहर है वह दिखाई देने लगी है। दिल्ली तो काफी समय से इसको लेकर के परेशान ही है, कुछ और राज्यों में अब रात के कर्फ्यू फिर से लगाए जाने लगे हैं। कहने का कुल मतलब यह कि अभी भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि स्वस्थ होने की दर बहुत अच्छी हो रही है, संक्रमण होने की दर भी काफी घट करके 5 से भी कम हो गई है, तो ऐसे में अब इसका भय नहीं रह गया है। नो डाउट कि आपको लगातार वैक्सीन के बारे में बहुत सकारात्मक खबरें पढ़ने को मिल रही हैं और हम लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी आशा की किरण भी पैदा कर रही हैं, लेकिन खासकर जब तक कि ये वैक्सीन बनकर तैयार होकर के लोगों तक पहुंच नहीं जाती, तब तक हम सबको चाहिए कि एक अच्छे नागरिक के रूप में हमेशा इससे जुड़ी हुई जितनी भी सतर्कताएं होती हैं उन सबको बनाए रखें और दूसरों को भी इसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूरोप वगैरह में कैसे जो सेकेंड और थर्ड वेव से उसने एक प्रकार से फिर से वहां की अर्थव्यवस्था पर अपने दुष्प्रभाव डालने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अब सेकेंड न्यूज के रूप में मैं थोड़ा सा G20 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जी स्टैंड फॉर ग्रुप 20, यानी कि ये 20 देशों का ग्रुप है। इस बार के प्री एग्जामिनेशन में बकायदे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन कौन से देश G20 के सदस्य हैं। ये बहुत कठिन प्रश्न था, क्योंकि आपको 20 देश के नाम मालूम होने चाहिए। इनफैक्ट सच पूछे तो नाम तो 19 देशों के ही हैं और एक संगठन है, यूरोपियन समुदाय समूह, जिसे आप कहते हैं यूरोपियन यूनियन, वो एक कंट्री के रूप में है, बाकी 19 कंट्रीज हैं, तो इस तरह से टोटल 20 माने जाते हैं। अब उतना तो नाम याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनके बारे में आप समझ लीजिए कि इसके सिवाय कोई चारा नहीं है, कि अगर परेशानी हो रही तो आप उसे छोड़कर अलग हो जाए। तो दोस्तों, ये जो ग्रुप 20 जो समूह है, ये सबसे पहली बार अस्तित्व में आया था 1999 में, और उस समय इसका जो मेन मकसद था वो खासकर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, उसको बनाए रखने के बारे में आपस में बातचीत करना, कुछ आवश्यक कदम उठाना। और खासकर इसमें दो लोग भाग लेते थे, एक तो सरकार होती ही थी उस राज्य की, उस राष्ट्र की, राज्य जब मैं कहूं तो यहां आपको राष्ट्र का ही उसका अर्थ लेना होगा, और साथ ही साथ जो उन देशों के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल बैंक है, उनके जो गवर्नर्स हैं वो भी भाग लेते थे। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी भी देश की रखने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो किसके पास होती है? उस देश के सेंट्रल बैंक के पास होती है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक के पास है, तो उसके गवर्नर भी भाग लेते थे। लेकिन बाद में फिर 2008 में आकर के इसके दायित्व को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। अब ये जो 20 देश हैं यूरोपियन यूनियन को एक मान करके चलिए, तो इन देशों के बकायदे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी बैठकें होती हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी भी बैठकें होती हैं, और जो इन देशों के थिंक टैंक हैं। देखिए, थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? थिंक टैंक का मतलब होता है बुद्धिजीवियों का समूह, जो अलग अलग विषयों पर सरकार को अपनी राय देता रहता है समय समय पर, उन्हें हम कहते हैं थिंक टैंक। इनके भी समय समय पर बैठकें होती हैं और ये आपस में फिर निर्णय लेते हैं। दोस्तों, G20 की इस बैठक को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया, और जो सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट हुई है न्यूज़पेपर्स में, वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने खासकर जो पर्यावरण के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में आगाह किया है। पर्यावरण संकट के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार दो तथ्य आपको मिलेंगे, पहला पर्यावरण और दूसरा आतंकवाद, कि इसे इसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। चलिए ये एक पक्ष हो गया, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसमें उस अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण से ही संबंधित है वो कुछ बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं और एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो लगातार अपने को अपडेट करता रहे। सच पूछे तो न्यूज वगैरह को सुनते रहने का यही सबसे बड़ा लाभ है। आपको बहुत ज्यादा आंकड़ों की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा तथ्यों के भंडार की जरूरत नहीं होती है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं डेफिनेटली उसकी तो अपेक्षा की ही जाती है कि आपको ज्ञान हो। तो देखिए उन्होंने कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। पहला उन्होंने कहा कि भारत ने LED जो बल्ब का इस्तेमाल शुरू किया है, LED लाइट का इस्तेमाल, उसकी वजह से लगभग 3.8 करोड़ टन यानी कि 3 करोड़ 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है। एक अच्छा आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा उन्होंने बताया कि जो उज्ज्वला योजना है ना, जिसके तहत गांव के गरीब लोगों तक रसोई गैस पहुंचाई जा रही है, 8 करोड़ परिवारों को रसोई गैस पहुंचाई जा चुकी है। यह लेटेस्ट आंकड़ा है। अभी देखिए जनवरी में मेंस के एग्जाम होने हैं तो उसमें आप इन आंकड़ों को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए आंकड़े हैं और इसे ही आपको ऑथेंटिक भी मानना चाहिए। तो जब रसोई गैस के लिए अब लकड़ी का कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उससे भी कार्बन उत्सर्जन कम हुआ होगा। इसके बाद फिर उन्होंने बताया बाकायदे कि हमारा लक्ष्य है कि हम सन 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को सामान्य भूमि में तब्दील कर देंगे। ये भी देखिए आपके कृषि क्षेत्र के लिए का बहुत जबरदस्त आंकड़ा है। 2030 तक 2,60,00,000 हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको हम सामान्य भूमि बनाएंगे। और एक जो हमारा नवीनीकरण ऊर्जा का जो लक्ष्य है, बार बार उसकी चर्चा होती है और ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि 2022 तक जो हमारा लक्ष्य है वो 175 गीगावाट तक का है और इसके बाद 2030 तक 450 गीगावाट हम नवीनीकरण ऊर्जा उत्पन्न करने लगेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाने चाहिए। इसी में उन्होंने हमारे जो दूसरे मंत्री थे, इसकी बात मैं नहीं कर रहा, G20 की बात है, एक और भी आंकड़ा, एक शब्द आया था एक योजना के बारे में, वो PM कुसुम योजना जिसका संबंध सौर पंप से है। जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो अगर आपके ध्यान में होती है बात तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वह है लव जिहाद। ये दो शब्द हैं और हिंदी के अखबारों में खूब छपने लगा है, बातचीत में भी खूब आने लगा है लव जिहाद। लव का आप अर्थ जानते हैं, खूब जानते हैं, जरूरत से कुछ ज़्यादा ही जानते हैं, प्रेम, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है। इसके बाद है जिहाद। जिहाद अरबी का शब्द है जिसका सीधा अर्थ होता है स्ट्रगल, संघर्ष करना, प्रेम के लिए संघर्ष करना, राइट। ये इसका स्ट्रेट अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया। सच पूछे तो पिछले लगभग 10 सालों में धीरे धीरे ये शब्द लोगों की जुबान पर आने लगा, मीडिया में भी आने लगा और अब स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश के कुछ राज्यों ने अब बाकायदे लव जिहाद के लिए कुछ कानून बनाने की बात करनी शुरू कर दी है और उसकी तैयारियां भी हो गई हैं। तो स्वाभाविक है कि चूंकि एक समस्या है, एक सामाजिक समस्या के रूप में अब इसे आपको देखना चाहिए। जब कानून बनेंगे तो उसकी भी कानूनी क्या स्थिति है, तो ये सब एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में शुरू में अगर आपको बता दिया जाए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो आप थोड़े से सतर्क हो जाएंगे। देखिए लव जिहाद का सीधा सा संबंध अगर आप बहुत सरल शब्दों में आप कहना चाहें तो एक धर्म मुस्लिम लड़का है और अगर वो मुस्लिम लड़की से शादी करता है, ठीक है, तो मुस्लिम जो हिंदू लड़की है उसको अपने धर्म को परिवर्तन करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अगर ये जबरदस्ती किया जाता है कि मुझसे जो हिंदू लड़की है उसके धर्म को परिवर्तित कराया जाता है तो इसको अब टर्म कुछ इस तरह का लव जिहाद का दे दिया गया है। सामान्य तौर पर मैं आपको बता रहा हूं केवल समझाने के लिए, है ना, इसकी व्याख्याएं और भी हैं लेकिन हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यह दो धर्मों के बीच होने वाले विवाह से संबंधित है लेकिन उस विवाह में धर्म परिवर्तन का तथ्य शामिल है। अब वो जो धर्म परिवर्तन है वो जबरदस्ती है या ऐच्छिक है वो एक अलग मुद्दा है, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अब आप देखिए कि हमारी संवैधानिक और कानूनी स्थिति क्या है। सिविल सर्विस में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहली बात तो यह है कि हमारा जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसके तहत शादी और तलाक के जो मामले हैं, शादी और तलाक के मामले वो समवर्ती सूची में आते हैं, यानी कि केंद्र भी उस पर कानून बना सकती है और राज्य भी उस पर कानून बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ राज्य भी कानून बनाने जा रहे हैं, और जो समवर्ती सूची में जब कानून बनाए जाते हैं तो उसका एक प्रोविजन है, आप जानते हैं कि अगर राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून से टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यों के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो निरस्त हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि राज्यपाल को लगता है कि इस मामले को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना चाहिए, तो जब कोई राज्य कानून बना देगा तो राज्यपाल चाहे तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। ये इसका एक पक्ष हो गया। इसका दूसरा पक्ष है कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां देखिए कि धर्म है ना, धर्म परिवर्तन की बात है, इसीलिए मैं आपके ध्यान में यह बात ला रहा हूं। और भारतीय कानून के अनुसार, अब कानून की बात है, किसी भी धर्म के व्यक्ति अगर वो बालिग हो गए हैं यानी कि उनकी आयु विवाह करने योग्य हो गई है तो बकायदे विवाह कर सकते हैं कानून के अनुसार। मतलब वहां धर्म के आधार पर कानून विवाह न करने की मनाही नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं तो विवाह नहीं कर सकते, बकायदे विवाह कर सकते हैं। लेकिन वहां फिर से हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जो नैतिकता है, जो स्वास्थ्य है, या कह लीजिए कि किसी तरह के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है लेकिन जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो मैंने कहा ना कि धर्म परिवर्तन अगर जोर जबरदस्ती से होता है और ऐच्छिक होता है तो इन दोनों में काफी फर्क है, तो ये देखना होगा कि इससे मूल अधिकारों का उल्लंघन किस सीमा तक हो रहा है। अब हमारे यहाँ जो सामान्य तौर पर जो कानून है वह भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप कोई गलत एफिडेविट देते हैं, अपनी उम्र छिपाते हैं, अपना धर्म छिपाते हैं, या वैवाहिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देते हैं तो भारतीय कानूनों के तहत बकायदे सजा का प्रावधान है। दूसरी बात कि अगर किसी का अपहरण कर लिया जाता है जबरदस्ती तो बकायदे आईपीसी की धारा 366 के तहत उसे 10 साल की सजा दी जा सकती है। तो इस तरह की कानूनी व्यवस्थाएं भी पहले से हैं, ठीक है। अब कुछ राज्य कानून बनाने की बात कर रहे हैं, अब देखना यह होगा कि वो किस तरह के कानून बनाते हैं, केंद्र के कानूनों से उनका कितना विरोध है, कितना साम्य है, और उसके बारे में फिर और क्या जो हमारे संविधान के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं, वो हमें लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए रखनी होगी और अपने आप को अपडेट भी करते रहना होगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत से ईमेल लिखने वाले ऐसे मित्र हैं जिनके प्रति मुझे आज आभार व्यक्त करना है। इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं, आशुतोष आचार्य, संदीप चौहान, संतोष कुमार, देवसर मध्य प्रदेश से, ऋषिपाल सिरौली उत्तर प्रदेश से, जयदीप चौधरी, जितेंद्र रायकवाड़, आशुतोष यादव, कर्मवीर सिंह जोधपुर राजस्थान से, जयलक्ष्मी जपति कर्नाटक से, सैफ अहमद, अनुराग मिश्रा, विपुल सिंघल, अंकित राज मुंबई से, प्रतीक मिश्रा, कृणाल रावल, सगुना श्रीमाली सानंद गुजरात से, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, निशा निमोरिया सोमदत्त कुल्लू हिमाचल प्रदेश से, और साजिद हुसैन मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।